नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने संसद के बजट सत्र 2026 को 3 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम के लिए देश भर में 10 अप्रैल से रोड शो आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने रबी विपणन सत्र 2026-2027 के लिए एमएसपी पर गेहूं खरीद के नए दिशा निर्देश जारी किए और एसआई भर्ती परीक्षा 2025 आज और कल प्रदेश भर के 1174 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले 2023 में पारित कानून को 2029 से लागू करवाने के लिए संसद का बजट सत्र 3 दिन बढ़ा दिया गया है। केरलम में एक चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि बजट सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को फिर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस मुद्दे का पूर्ण समर्थन करने का आग्रह किया।
पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का बिल पास किया था, वैसे ही 16, 17, 18 को 2 काम करने हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं।
प्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए देश भर में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इनके माध्यम से एग्रीटेक कंपनियों, स्टार्टअप्स और शोध तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों को ग्राम में आमंत्रित किया जाएगा। कृषि और उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि ये रोड शो 10 अप्रैल से शुरू होंगे। ये 10 तारीख को जयपुर, 17 अप्रैल को दिल्ली, 24 अप्रैल को अहमदाबाद, 6 मई को हैदराबाद और 8 मई को पुणे में आयोजित होंगे। इसके जरिए राज्य के कृषि क्षेत्र में उपलब्ध निवेश संभावनाओं और विभिन्न पहलों की जानकारी दी जाएगी। ग्राम 2026 एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, इसमें प्रदेश भर से 75,000 से अधिक किसानों के शामिल होने की संभावना है। ये आयोजन 23 से 25 मई को होगा। प्रदेश में अटल ज्ञान केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आधुनिक लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पंचायत स्तर पर ही कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में हुई एक बैठक में अटल ज्ञान केंद्रों पर उपयोगी पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर ई मित्र सेवाएं और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा विकसित की जाए। श्री शर्मा ने कहा कि अटल ज्ञान केंद्रों के नए भवनों के निर्माण में गुणवत्ता और उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाए। पाली सांसद पीपी चौधरी कल जिले के प्रवास पर रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से विकास की प्रक्रिया बाधित होती है, ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन सभी के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करना चाहिए।
बार बार चुनाव होने से कुछ फायदा नहीं, और प्रतिवर्ष 5 चुनाव देश में होते हैं विधानसभा के, लगभग कभी 6 भी होते हैं, कभी 5 भी होते हैं, तो हर बार हमारे जनप्रतिनिधि गवर्नेंस में कम ध्यान होकर के चुनाव में ज्यादा रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो इसीलिए मोदी जी का सोचना है कि अगर 7 चुनाव कराए जाए तो देश को बहुत फायदा होगा। और इकोनॉमिक्स वगैरह ने जो अपनी रिपोर्ट जो हमारे सामने दी, उन्होंने कहा कि अगर 1-7 चुनाव होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होता है हर 5 साल, और हमें सबको पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हमें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जाना ही होगा।
दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। ये अवसर प्रार्थना, पश्चाताप और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम चरण को याद करने के पवित्र सप्ताह का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान लोगों को सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग और क्षमा के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने रबी विपणन सत्र 2026-2027 के लिए एमएसपी पर गेहूं खरीद के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत गेहूं की खरीद अब गिरदावरी आधार पर होगी और किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। सभी पंजीकृत किसानों को कल तक स्लॉट सुनिश्चित किया जाएगा। इस बीच प्रदेश भर में खरीद केन्द्रों पर गेहूं खरीद के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उधर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली के सुमेर, पुर, सांडेराव और ताकतगढ़ केंद्रों पर खरीद कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर श्री कुमावत ने बताया कि 30 जून तक खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी।
पिछले साल हमने यहाँ ताकतगढ़ में केंद्र शुरू कराया और ताकतगढ़ की जो केंद्र की सफलता मिली, निश्चित रूप से एमडी साहब बहुत ही बढ़िया रहे और सब लोग है ना, किसानों के खरीद केंद्र उपयोगी साबित हुआ। तो इस बार हमने सांडेराव में भी एक केंद्र शुरू कराया, 4 खरीद केंद्र अभी गेहूँ के हो गए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल इटावा में 68 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इंडोर खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे। श्री बिरला ने इटावा सीएचसी में अंधड़ से घायल हुए लोगों का हाल जाना। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि ढीपरी चंबल चणदा पुल बनने से इटावा क्षेत्र की संपर्क सुविधा बेहतर होगी।
रोडा चामंदा की जो पुलिया जो 258 करोड़ की लागत से बनेगी, इससे आने वाले समय में इटावा क्षेत्र के सारे लोगों की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, ताकि आने वाले समय में ये सारे लोग हेड लाइन से जुड़ जाएंगे। दिल्ली मुंबई कोटियोर से जुड़ने से सारे इलाके के किसानों में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी और रोड कनेक्टिविटी से समृद्धि खुशहाली आएगी।
वहीं कृषि मंत्री श्री मीणा ने कहा कि इस पुल के बनने से किसानों को उपज ले जाने में आसानी होगी।
ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये पुल है। किसानों का कृषि उपज ले जाने के लिए, क्योंकि टेल एंड का जो वहाँ पड़ता था और एक नदी के कारण ये समस्या खड़ी हो गई थी कि आपस में इंटीरियर का इलाका जुड़ नहीं पाता था, तो इसके कारण जुड़ जाएगा और किसानों को बहुत फायदा मिलेगा।
प्रदेश में आज और कल एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से हो रही इस परीक्षा के लिए 1174 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 7,70,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा दोनों दिन दो दो पारियों में सुबह 11 बजे से 1 बजे और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं एसओजी की ओर से नकल रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास ई मित्र और साइबर कैफे भी बंद रहेंगे। इस बीच कल राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को पूरी तरह से रद्द करने के आदेश दिए हैं। राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के असर से बीते 24 घंटों में कुछ हिस्सों में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कोटा, टोंक, बूंदी, दौसा और श्रीगंगानगर में ओले भी गिरे। मौसम विभाग के अनुसार कल जयपुर सहित 16 शहरों में बरसात हुई। प्रदेश में लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। आज दोपहर बाद सभी संभागों के कुछ हिस्सों नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। वहीं कल इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने संसद के बजट सत्र 2026 को 3 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम के लिए देश भर में 10 अप्रैल से रोड शो आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने रबी विपणन सत्र 2026-2027 के लिए एमएसपी पर गेहूं खरीद के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और एसआई भर्ती परीक्षा 2025 आज और कल प्रदेश भर के 1174 75 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।